بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. آج شوال ایک اہم دن ہے کہ جس دن حجاز میں آل محمد کے اوپر ایک نیا ظلم کیا گیا اور ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا. یہ سعودی خاندان اور اس کے ساتھ جو محمد بن عبد الوہاب کا خاندان دینی مذہبی طور پہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، یہ ایک اس طرح کا اتحاد تھا کہ جس نے مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، حالانکہ یہ سلفی نہیں ہے. سلفیت ایک اہل سنت میں تحریک رہی ہے، ایک حد تک جو ہے گیارہویں بارہویں صدی میں شیعہ کے پاس بھی تھی، لیکن یہ زیادہ تر اہل سنت کے پاس ایک تحریک رہی ہے. اس کا بنیادی جو فکر ہے وہ یہ تھا کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں گے واپس جا کر رسول اکرم کے ثواب حاصل، یا پھر ان کے بعد جو تابعین ہیں ان سے، یا پھر ان کے بعد تبع تابعین سے. یہ سلف صالح ہیں اور ہم دین انہی سے سمجھیں گے، ہم دین کو ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ رسول اکرم کے دور کے قریب رہے ہیں، اس لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اس واپسی کا نام سلف ہے، اور یہ تحریک جو ہے مختلف اوقات میں تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان اٹھتی رہی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، وہاں سے دین کو سمجھنا چاہیے. یہ اصول سلفیت کا کوئی بنیادی طور پہ درست اصول نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں عرب وہاں پہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فکری کوئی نظام نہیں تھا، ثقافتی کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ملک، کوئی قانون، کوئی آئین، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. مکہ میں جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل پورے مکہ میں جو ہے 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب اس تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ سمجھنا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ قرآن اور رسول اکرم کی زبان کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے. بہت ساری قرآن مجید کی آیات جو نہایت گہری ہیں ان کے لیے سمجھ چاہیے. جب انسان کئی برسوں علوم میں گہرا جاتا ہے تو پھر جا کے کسی حد تک جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب اس دور میں اگر کوئی انسان اپنی پوری عمر کھپائے اور پھر جا کے کوئی چیز سمجھے، جس دور میں کہ تعلیم عام ہے، علوم ترقی کر چکے ہیں، وسائل و ذرائع بہت زیادہ ہیں، آج کے اس انسان تو کل کا جو ایک بدو عرب تھا وہ جو دین کو سمجھتا تھا وہ تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. خود جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ احادیث کے جن کو بہرحال कहा जाता है कि जी ये दुरुस्त अहादीस हैं, ऐसे ये बुखारी की रिवायत है। मसलन रोज़े के बाब में चैप्टर रोज़े का है और रोज़ा रखने के अवकात के हवाले से कुरान मजीद की आयत है कि कहा जा रहा है कि जी खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धारी स्याह धारी से जुदा हो जाए। अब ये जो दो लफ्ज़ हैं सफ़ेद धारी और स्याह धारी, सही बुखारी की रिवायत में है कि दो सहाबा थे, उन्होंने ये समझा कि ये सफ़ेद धारी और स्याह जो है धारी ये धागे हैं जो उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है कपड़े को बनाने के लिए। तो उन्होंने ये किया कि एक सफ़ेद धागा लिया एक स्याह धागा लिया और रात को जो है वो आपस में मिला के रख लिया। अब समझने ये लगे कि जब ये जुदा हो जाएंगे तो रोज़े का जो सहरी का टाइम है ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ये जुदा होने वाले नहीं थे, इनसे मुराद ये सफ़ेद धागा सूत का और स्याह धागा नहीं था, बल्कि ये सुबह की सफ़ेदी और उसका धागा और रात की स्याही और उसका धागा था। ये जो है वो अपने इस्तेमाल वाला धागा जो है वो समझ बैठे। सुबह को फिर रसूल अकरम के पास आए तो उन्होंने फरमाया कि ये सफ़ेद धागा स्याह धागा जो है ये सूत का नहीं है, ये दिन और रात की जो है वो धागा है। अब ये तो रसूल अकरम के पास आ गए तो उनको मालूम हुआ, अगर ये रसूल अकरम के पास ना आते तो आज जो है वो कहा जाता जी ये रसूल अकरम के सहाबा हैं, उन्होंने जो समझाया हम उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते। ये तसव्वुर जो है वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसमें सलफ जो है उन्होंने ज़ाहिरन जो है कमी कोताही उनसे हुई है दीन समझने में। कई मामलात हैं और कई शख्सियात हैं हमारे यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनको तादाद के हवाले से 1 लाख से ज़्यादा कहे गए हैं, लेकिन जिनसे रवायात हमारे यहाँ पहुँची हैं वो 2000 और चंद हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उनमें भी अक्सर वो हैं कि जिनसे किसी से एक रवायत है, किसी से दो रवायात हैं, किसी से तीन जो है अहादीस हैं। कसरत से रवायत करने वाले बहुत कम हैं, शायद उनकी तादाद जो है वो 20-25 तक जो है मुश्किल से पहुँचे। फिर उनमें भी जो फतवा देने वाले थे वो बहुत कम थे। उन फतवा देने वालों में भी जो फहम है वो लाजमी नहीं है कि दुरुस्त फहम हो, हालांकि कुरान मजीद में खुद तयम्मुम का जिक्र है, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियतें जो है वो इससे नावाकिफ थे और वो यही फतवा देते रहे कि अगर इंसान जो है वो मुजनब हो और उसको गुस्ल की ज़रूरत हो, पानी न मिले तो रोज़ा न रखे, नमाज न पढ़े जब तक पानी नहीं मिलता, जबकि ये हुक्म तयम्मुम का खुद कुरान मजीद में है। अब ये कहना कि जी उस दौर के जो अफराद थे वो रसूल अकरम के ज़्यादा करीब थे, उस दौर से ज़्यादा करीब थे इसलिए हमसे ज़्यादा समझते हैं, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। बहरहाल ये सलफियत है, सलफियत एक तहरीक थी। ये तहरीक एक मज़हब का रूप धार लेती है जब ये 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया के पास पहुँचती है। इब्ने तैमिया शाम का रहने वाला एक शख्स है कि जो जिन हालात में उसकी तरबियत हुई है और जो उसकी नफ्सियात के हवाले से इर्द गिर्द के उसके हालात थे उसको देखना ज़रूरी है। ये वो दौर था जब तातारियों ने मुसलमानों पे हमला कर दिया था और बगदाद की ईंट से ईंट बजाई जा चुकी थी। मुग़ल जो है वो मुसलमानों के पूरे इलाके पर काबिज़ हो चुके थे और अक्सर उन मुग़लों में मुसलमान भी हो चुके थे, इसलिए एक तरह से जैसे कि अब वो एक हक रखते थे कि वो भी मुसलमान हुक्मरान बन सकते हैं, इसलिए कि मुसलमानों में उस दौर में जो बादशाहतें थीं उनमें किरदार तो था नहीं, यही मुसलमान कलमा होता था, तो कलमा तो इनके पास भी है, इसलिए सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। अब इब्न तैमिया ने देखा कि हम मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं, उसका सबब क्या है। उस वक्त ये उस्मानी खिलाफत का तहरीक भी शुरू हो चुकी थी और बुनियाद उसकी पड़ चुकी थी तुर्की में, और वो फैलना उसने शुरू कर दिया था। ये उस्मानी जो खिलाफत तुर्कों की थी, इनके नज़दीक जो है वो निज़ाम खिलाफत का निज़ाम था, खिलाफत राशिदा का निज़ाम, यानी पहले जो चार खुलफा रसूल अकरम के पास जो है गुजरे हैं उनको ये आइडियल बनाते थे। बाद में जो हुक्मरान आए बनी उमैया के, मुआविया से लेकर और आखिरी जो हुक्मरान है मरवान हमार तक, उन सबको ये ज़ालिम हुक्मरान तसव्वुर करते थे। हाँ, अहले सुन्नत के ये अकीदा ज़रूर है कि चूँकि मुआविया जो है वह रसूल अकरम का साहबी था, इसलिए अपनी ज़बान बंद रखी जाए, उसको बुरा न कहा जाए, लेकिन उसने गलतियाँ की हैं और वो कोई साले हुक्मरान नहीं था और वो कोई खलीफा रसूल नहीं था। खिलाफत ख़त्म हो गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद कोई खिलाफत नहीं है, ये अहले सुन्नत का था। ये इब्न तैमिया जो है उसने एक तरफ ये देखा कि जी इनके सामने खिलाफत राशिदा का निज़ाम है, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ वहाँ पे जो है वो ईरान में सफ़वी हुक्मरान थे कि जो अपने आप को शिया कहलाते थे और अहले बैत के निज़ाम का नाम लेते थे, और इनकी और जो उस्मानी खिलाफत थी उनके आपस में जो है वो मुखालफत और दुश्मनी थी। तो इन्होंने देखा कि ये भी जो है वो इस तरह से हैं। अब उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि तारीख में वो कौन सा दौर है कि जिसमें मुसलमान मजबूत रहे हैं। मुसलमान मजबूत रहने का उनका नज़रिया भी ये है कि दीन चाहे हो या ना हो, दीन के अहकाम चाहे मुअत्तल हों, लेकिन मुसलमानों के पास दुनिया की कुदरत और ताकत हो, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, तो ये एक निज़ाम जो है वो मिसाली निज़ाम है। इसलिए उन्होंने देखा कि ये मिसाली निज़ाम उनको सिर्फ़ और सिर्फ बनी उमैया में नज़र आया, इसलिए वो चले गए। इब्न तैमिया जो है उन्होंने मरकज़ बनाया मुआविया और यजीद और उसके बाद आने वाले हुक्मरानों को, बनी उमैया को उन्होंने मैयार बना लिया। अब बनी उमैया चूँकि बहरहाल पहले तीन खुलफा को तस्लीम करते थे, इसलिए इन्होंने भी तस्लीम कर लिया, लेकिन चूँकि बनी उमैया हज़रत अली अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं करते थे, इसलिए इब्न तैमिया ने खुलकर एतराज़ात किए हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत पर। और रसूल अकरम की वो हदीस के जिसमें कहा गया है कि 12 खुलफा होंगे मेरे बाद, ये दीन जो है 12 खुलफा तक गालिब रहेगा, तो इब्न तैमिया ने खुलकर जो है मिनहाजुस सुन्ना में ये लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम के दौर में बाहमी जंगें रहीं, कौन सा जो है वो अमन रहा और कौन सा जो है वो एक मजबूत हुकूमत रही कि अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत इस 12 खुलफा में शामिल हो। यानी उसने एक तरह से जैसे कि अली अलैहिस्सलाम को निकाल दिया था, लेकिन निकाल नहीं सकते थे, मजबूरन जो है वो रखा, लेकिन मयार उन्होंने बनी उमैया को करार दिया। अब बनी उमैया उनके सामने मिसाल बन गए। बनी उमैया का एक ये था कि चूंकि बनी उमैया की जितनी दुश्मनी थी वो मुसलमानों के अंदर ही रही, और मुसलमानों में से उनके साथ रही जो अली और औलाद अली से मोहब्बत रखने वाले थे, इनके अंदर भी यही चीज़ जो है समा गई। अब इब्ने तैमिया ने जो निज़ाम बनाया उसमें मरकज़ जो है उन्होंने मुआविया और यजीद और बनी उमैया को रखा, और फिर एक सलफियत के नाम से एक मजहब बना दिया, तहरीक एक मजहब में बदल गई। जबकि आज तक जो है सलफी बहुत सारे हैं कि जो इस मजहब को कबूल नहीं करते, इब्ने तैमिया की बहुत सारी चीज़ों को वो रद्द करते हैं। इब्ने तैमिया का जो नज़रिया और अकीदा तवस्सुल के सिलसिले में है उसको भी रद्द करते हैं। इब्ने तैमिया का जो नज़रिया और सिलसिला कबूर के हवाले से उनको भी रद्द करते हैं। सलफी भी हैं लेकिन उनको रद्द करते हैं, क्योंकि इब्ने तैमिया ने एक तहरीक को एक मजहब बना दिया, एक जामिद मजहब। अब उसके दौर में तो इसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली खुद उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये 12वीं सदी हिजरी में जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब निकला और उसने फिर जो है सऊद जो है ख़ानदान के साथ अपना इत्तेहाद किया, और ये सऊद ख़ानदान जो है दरिया में एक डाकू ख़ानदान था, एक रास्ते में जो है पढ़ने वाला जो है वो गांव है, जो रियाज से अगर इंसान जो है जिद्दा या मक्का जाए तो रास्ते में पढ़ता है, ये वहाँ से लूट मार करते थे। अब इनके हाथ जो है वो एक नज़रिया लगा, वो नज़रिया जो इब्ने तैमिया का था उसको एक और गूंढे अंदाज में जो है मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने पेश किया, और उसके नतीजे में ये सामने आया कि सामने जो ये उस सल्तनत उस्मानी है ये भी सारे काफिर मुशरिक हैं, इसलिए कि तवस्सुल के कायल हैं, और ये बुजुर्गान की जो कब्रें हैं उन पे रोज़े बनाए हुए हैं इसलिए ये भी मुशरिक को काफिर हैं, इसी तरह से जो इराक और ईरान में हुकूमतें हैं ये भी मुशरिक को काफिर हैं। चूंकि ये एक ऐसा मजहब था जो गैर मुस्लिम के मुकाबले में खुद मुसलमानों के खिलाफ एक उभारने वाला था, इसलिए वहाँ पे सऊद जो ख़ानदान था उसने देखा कि ये हमारे हाथ में अच्छा हथियार हो सकता है, तो उन्होंने तौहीद के नाम पे जो है वो सब मुसलमानों को काफिर और मुशरिक करार देना शुरू कर दिया, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी तहरीक एक बैनुल-अक़वामी हिमायत के साए में चली गई। बरतानिया ने हिमायत की, फिर जो है अमेरिका ने उसकी हिमायत की, ये हमेशा मुसलसल इसी तरह से रहा है। फिर जब मगरबी दुनिया थोड़ी आगे आई तो उन्होंने देखा कि जी ये मज़हब तो ऐसा है कि जो इसका जो कोर वैल्यू है वो है ही खुद मुसलमानों के खिलाफ, यानी ये सबसे ज़्यादा मुशरिक करार देते हैं उनको कि जो मुसलमान हैं, शिया हों सुन्नी हों, ये सारे जो है उनको मुशरिक को काफिर करार देते हैं, चाहे सूफी हों उनको भी मुशरिक को काफिर करार देते हैं, इसलिए मुसलमानों में तफरके के अंदाज में उन्होंने इसको सरपरस्ती की इसकी और आगे बढ़ाया, और आज खुद जो है ये सऊदी निज़ाम का हामी खुद कह रहा है कि हमने ये निज़ाम, हमें ये वहाबियत जो दुनिया में फैलाई है, जो हमने डॉलर खर्च किए हैं, जो रियाल दिए हैं वो मगरब के कहने पे दिए हैं, और उन्होंने कहा था तो हमने ये फैलाया, ये इस तरह की सूरत हाल है। अब होता यह है कि कहा गया है अहादीस में, शिया सुन्नी दोनों अहादीस में, कि कब्र को 4 उंगलियों से ज़्यादा बुलंद न रखो। अब कब्र जो है वो कौन सी चीज़ है? कब्र वही है कि जहाँ पे मुर्दा को दफन किया गया है, जिसकी वफात हो गई फिर उसके ऊपर मट्टी डालते हैं, तो वो कब्र जो है वो 4 उंगली से ज़्यादा बुलंद नहीं है। अगर 4 उंगली से ज़्यादा बुलंद है तो मकरूह हो जाती है, पसंदीदा नहीं है, हराम नहीं है, पसंदीदा नहीं है। लेकिन इस कबर के ऊपर एक अलहदा से इमारत बनाना, वो इमारत कबर नहीं है, वो अलहदा से इमारत है। लेकिन इन्होंने जिसको कहते हैं कि चूंकि ये सारे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हो या दरिया के ये सऊद ख़ानदान हो, ये सारे जो है बयाबान के रहने वाले थे, इनको इतनी गहरी जो है और नाजिक जो है सोच कहाँ से समझ में आया। उन्होंने जो है इसके ऊपर जो इमारत बनी उसको भी कब्र करार दे दिया और कहा कि ये कब्र जो है वो हराम है और इस इमारत को जो है वो तोड़ना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम ने कहा था कि जी चार उंगली से ज़्यादा जो है कब्र बनाना हराम है। कब्र जो है वो वही है जहाँ पर दफन हुआ है और मिट्टी आप डालते हैं ऊपर मिट्टी आ जाती है सतह ज़मीन तक और फिर जो है उसको ऊपर उठाते हैं, ये चार उंगली से ज़्यादा मकरूह है। लेकिन उसके ऊपर अगर इमारत जो है वो हराम है तो ये तो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो बनाई गई वो तो पहले से कमरा था, एक बना बनाया चार दीवारों का कमरा था और ऊपर जो है छत थी उसके अंदर रसूल अकरम को दफन किया गया। अगर ये हराम है कब्र के ऊपर इमारत इस तरह से बनाना, तो रसूल अकरम के दफन करना जो सारे सहाबा किसी ने भी एतराज़ नहीं किया वो खुद हराम होना चाहिए ना उस बिल्ला मिला। फिर कहते हैं कि जी ये इस तरह से चूंकि वो पहले बनी हुई थी तो ठीक है बनी हुई थी, अब इसको क्या करें, लेकिन इसके ऊपर कुब्बा बनाना जो है वो हराम है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो खामखा की बातें हैं, वरना इमारत एक अलहदा चीज़ है और कब्र का बुलंद होना एक अलहदा चीज़ है और इस कब्र को बुलंद कहना तब जो है दुरुस्त है जब ये मिट्टी जो है जो डालते हैं वो ज़मीन से ऊपर आ जाए और चार उंगली से ज़्यादा मकरूह है। लेकिन उन्होंने इसको जो है वो कब्र करार दे दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो भी कब्र की ज्यारत के लिए आता है ये कब्र परस्त है, कब्र परस्ती कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अकदस की ज्यारत करना मुसलमान जो है वो एक बहुत ज़्यादा अपने लिए नेमत समझते थे, इसलिए बहुत से लोग जब वहाँ पे जाते थे रसूल अकरम के कब्र को जो है वो ज्यारत होती थी तो खुदा की बारगाह में सजदा करते थे, तेरा शुक्र है कि तूने ये नेमत दी के रसूल अकरम तेरे रसूल की हमने जो है कब्र की ज़्यारत की है। अब ये कहने लगे कि जी ये जो सजदा करते हैं ये भी इस कब्र को सजदा करते हैं और ये कब्र परस्त है, इसलिए इनको जो है सबसे बड़ा शिर्क यही है, सबसे बड़ा कुफ्र यही है और इनको जो है कत्ल हर चीज़ जो है हलाल है, ये इस्लाम से खारिज हो गए। ये सूरत हाल जो है इनके पास रही है जबकि ये सूरत हाल खुद जो है अहले सुन्नत में और अहले सुन्नत में भी जो सलफ़ी हैं उन सब से मुख्तलिफ रही है। ये सलफ़ी भी एक मजहब सलफ़ी है न कि एक तहरीक सलफ़ी है जो कि तारीख इस्लाम में थी। अब हुआ ये कि चूंकि ये इस मुखालफत में चले गए, हम जब इबन तैमिया को पढ़ते हैं और मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब को पढ़ते हैं तो अजीब अजीब चीज़ें हमें जो है नज़र आती हैं। मसलन ये सारे जो है हमें यजीद की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, उसकी तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं, जो उस पर एतराज़ात हैं उनका खामखा का जवाब देते हुए नज़र आते हैं। सबब क्या है उसका? सबब ये है कि चूंकि मुसलमानों के पास एक अकीदे के हवाले से खिलाफत तो ख़त्म हो गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, बाकी बादशाहतें हैं, तो बादशाहतों का जवाज क्या है, शरी हैसियत क्या है, बादशाह जायज़ है, ये बादशाहत का निज़ाम जायज़ है, चाहे बनी उमैया की हो चाहे बनी अब्बास की हो, क्या ये जायज़ है? कहाँ से जायज़ करार दिया जाएगा? अब ज़ाहिर है कि अगर खिलाफत राशदा है तो उसमें तो बादशाहत नहीं है, हज़रत अबू बकर के बाद उसका बेटा नहीं आया, हज़रत उमर के बाद उसका बेटा नहीं आया, हज़रत उस्मान के बाद उसका बेटा नहीं आया, अली अलैहिस्सलाम के बाद भी अली अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मेरे बेटे को बनाओ, लोगों ने खुद बनाया आज़ाद इख्तियार के तौर पर। तो खिलाफत तो बादशाहत नहीं है, बादशाहतों को कैसे जवाब दिया जाए? उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था मुआविया और यजीद की हुकूमत को जायज करार देना। मुआविया एक बादशाह है, सहाबी है, उसको हम नाजायज कैसे कह सकते हैं? इसलिए बादशाहत जायज हो गई। उसके बाद फिर जो है यजीद है, कैसे हम कह सकते हैं कि एक सहाबी ने जो काम किया है वो गलत हो सकता है? जबकि खुद जो है वो अहले सुन्नत के कोई भी शख्स हो वो सहाबी को कोई मासूम नहीं समझता, उनसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन अहले सुन्नत के मुताबिक जो है उनका एहतराम कर अपनी जगह पे, लेकिन गलती को गलती कहना पड़ेगा, कोताही को कोताही कहना पड़ेगा। ये आकर कोताही को कोताही नहीं मानते, गलती को गलती नहीं मानते। जब इन्होंने बादशाहत को जवाब दे दिया कि जी खिलाफत के अलावा भी इस्लामी निज़ाम हो सकता है, और वो बादशाहत का निज़ाम मदानी सारी बादशाहतें जायज़ हो गई हैं। आप देखेंगे इस वक्त जो दुनिया में यजीदियत की हामी, यजीद की हामी आपको मौलवी मिलेंगे, वो वही हैं जो राबता रखते हैं सऊदी हुकूमत से। अब क्यों? उसका सबब यह है कि सऊदी बादशाहत, अगर कहते हैं कि बादशाहत जो है वो हराम है, बादशाहत इस्लाम का निज़ाम नहीं है, ये मुआविया का जो निज़ाम था वो दुरुस्त नहीं था, ये यजीद का निज़ाम दुरुस्त नहीं था, इसलिए कि बादशाहत थी, जब सहाबी हो के और बादशाहत गलत हो सकती है तो आज के बादशाह कैसे जायज़ होंगे? उनको जवाब कहाँ से मिलेगा? उनकी शरई हैसियत कहाँ से मिलेगी? जब तक वो यजीद और मुआविया का दिफा नहीं करेंगे, बनी उमैया के उन बादशाहों का दिफा नहीं करेंगे, मौजूदा बादशाहत को जवाब कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये एक ऐसा निज़ाम था कि जो बादशाहों के मफाद का निज़ाम था, बादशाहों को जवाब फराहम करने वाला निज़ाम था, इसलिए बादशाहों ने इसको कबूल किया और इसको आगे बढ़ाया। और जब किसी भी मजहब और दीन को हुकूमती सरपरस्ती नसीब हो तो ज़ाहिर है कि वो फलने फूलने लगता है। कहावत भी है कि अल्लाह सोला दीन मुलूक हैं, लोग अपने बादशाहों के दीन पे होते हैं, जो बादशाह का दीन है लोगों का भी वही दीन है। इसलिए ये मजहब और दीन इस तरह से जो है वो फैल गया। अब इन्होंने जो है ये करना शुरू किया कि जब हिजाज में इनको ताकत मुयसर हो गई, मदीने पे इन्होंने कब्ज़ा किया, मक्के पे इन्होंने कब्ज़ा किया, वहाँ की आबादी को कत्ल किया, गारत किया और कई महीनों तक मुआसरा रखा, फिर सबको काफिर मुशरिक करार देकर दोबारा मुसलमान होने के लिए कहा, और कहा कि जो मुसलमान दोबारा नहीं होगा वहाबियत के उस मुताबिक उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जब इनके पांव थोड़े से वहाँ पे जमे, फिर उन्होंने जो है वो हिजाज से बाहर भी निकले हैं, नजफ पे कई हमले किए हैं, करबला पे बहुत ज़्यादा हमले किए और वहाँ पे कत्ल गारत गिरी की, वहाँ के जो मुकद्दस मकामात हैं उनको नुकसान पहुँचाया, लेकिन बहरहाल ये महदूद रहे वहाँ तक। 1926 में इन्होंने ये दो जो मकामात थे, एक मक्का में जो कब्रिस्तान जन्नत मौला कहलाता है, वहाँ पे जो बनी हाशिम की शख्सियात की खबरें थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की थी, हज़रत अबू तालिब की थी, हज़रत खदीजा की मज़ार था, उन सबको जो है वो बिल्डोज कर दिया। और इसी तरह से फिर मदीना में जो शख्सियात का मज़ारात थे, जिसमें इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, एक रवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन सब के मज़ार जो एक बने हुए थे इमारतें थी, उन सबको जो है ख़त्म कर दिया। ये उसी के मुताबिक के कब्र को चार उंगलियों से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि जी जब रसूल अकरम फतेह मक्का हुआ तो अली अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जितनी कब्रें हैं उन सबको गिरा दो, जबकि वो सारी कब्रें जो है वो गैर मुस्लिमों की थी, वो मुशरिकीन की कब्रें थी, और बाकी मुशरिक जो है वो उसको इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे, उनकी जैसे कि एक तरह से जो है वो रब करार देकर उनकी इबादत करते थे। कोई मुसलमान खुदा के अलावा किसी को रब करार नहीं देता, कोई मुसलमान खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। ये मुसलमान और इस्लाम जो है वो कम अज़ कम इतना तो इंसान को सिखाता है कि इबादत सिर्फ खुदा की है और रब सिर्फ खुदा है। ये जो इमारत बनी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी इज्जत व आबरू के लिए है, और जो आने वाले हैं उनके आसाइश के लिए है कि सुकून से आराम से बैठ के जो है वो ज़ियारत भी करें, अपनी कोई जो है नमाजें हैं वो पढ़ें और दीगर जो है इबादत अंजाम दें। कब्र के पास कोई नमाज पढ़ना कोई हराम नहीं है, अगर कब्र के पास नमाज पढ़ना हराम करार दिया जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा था जिसमें उनकी कब्र बना दी गई, हज़रत बीबी आयशा वहीं पे रहती थी और वहीं पे नमाज पढ़ती थी। जब वहाँ पे रहना भी जायज़ है और वहाँ पे नमाज पढ़ना भी जायज़ है तो बाकी दूसरे जो कब्रें और रोज़े हैं उनका भी वही हुक्म होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें उनके अंदर एक जैसे के जिसको कहा जाए कि हसद और एक इंतकाम था कि जो बनी उमैया ने एक इंतकामी तहरीक उठाई थी बनी हाशिम के खिलाफ, क्योंकि बनी उमैया के काफ़ी लोग इस्लाम के साथ मुकाबले में कत्ल हुए थे, तो उन्होंने अहले बैत के ख़िलाफ़ जो है एक इंतकामी तहरीक उठाई थी, लेकिन अहले बैत भी बाकी रहे और उनके मानने वाले भी बाकी रहे। बनी उमैया के 100 साल ज़ालिम तरीन दौर के बाद भी बाकी रहे, अब्बासियों के 400 साल 300 साल जो है वो ज़ालिमाना दौर के बाद भी बाकी रहे। तो ये उस हवाले से एक जो है वो जैसे कि हसद और इंतकाम के उसमें थे, इतनी कोशिशें हुई इनको ख़त्म करने की फिर भी ख़त्म नहीं हुई, तो वो एक तरह के जो है वो इस तरह के हसद और जलन और इंतकाम की आग में थे और उन्होंने ये सारा जो है इस तरह से अंजाम दिया है। इस वक्त जो है ये सलफियत का मजहब जो एक शक्ल सूरत अख्तियार कर गया वहाबियत की, ये जवाल पजीर है। पूरी दुनिया में अब इसका कोई वली वारिस नहीं है। मगरबी दुनिया ने इसकी सरपरस्ती की, उन्होंने भी अब सरपरस्ती छोड़ दी है। सऊदी इसकी सरपरस्त था, उसने भी अब जो है छोड़ दिया है। अब तो सऊदी अरब जो है वो बजाय इसके के वहाबियत की सरपरस्ती करे, वो तो बेदीनी उनको बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा सरमाया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अभी तक ये याद रखें कि ऐसा नहीं है कि कोई ये जन्नत बती या जन्नतुल मुअल्ला जो है इसके बनने के कोई आसार जल्दी हैं, इसलिए कि ठीक है कि उनके अंदर से एक जो है दीन की मोहब्बत ख़त्म हो गई है, दीनदारी ख़त्म हो गई है। पहले भी नहीं थी दीनदारी, सिर्फ एक जो है हुकूमत थी और बादशाहत थी, लेकिन बहरहाल एक हद तक जो है वो इजहार करते थे, अब खुल के जो है बेदीनी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर से अभी तक अहले बैत की दुश्मनी और अहले बैत के मानने वालों से दुश्मनी वो बाकी है, और ये बाकी रहेगी, इसलिए कि बनी उमैया की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत एक दिल में एक साथ आ नहीं सकती है। इसलिए ये अगर बनी उमैया को छोड़ते हैं तो इनकी बादशाहतों का सारा जवाब खत्म हो जाता है। अगर ये बनी उमैया को लेते हैं तो फिर बनी उमैया और अहले बैत की मोहब्बत एक साथ जमा नहीं हो सकती। हमने भी एक ये देखना है कि इस वक्त जो ये सऊदी तहरीक है, या ये जो मजहबी सलफियत है, या ये जो मजहब वहाबियत है, इसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। उनमें से एक नुकसान ये है कि उन्होंने जो रोज़ आए दस्ते उनको शहीद कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने दिया है वो ये है कि ये इस्तेमार के एजेंट बन गए, मुसलमानों को इन्होंने बेच दिया, मुसलमानों की हिमायत जो है इन्होंने अमेरिकी हिमायत के उसमें जो है वो दे दी सरपरस्ती में, और अमेरिका मुसलसल इनके ज़रिए से पूरे आलम इस्लाम पे जो है काबिज़ रहा है। ये इनकलाब ईरान है कि जिसके बाद सूरत हाल जो है वो बदल गई थी। लेकिन हम उनके जो है छोटी छोटी गलतियों को देखें और बड़ी गलती जो उनकी है उनको जो है वो न देखें, तो ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी मारिफत की कमज़ोरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो ये मज़ारात को मिसमार किया है, ये उनके अहले बैत से दुश्मनी है, ये बेदीनी है। लेकिन जो उन्होंने मुसलमानों को बेच दिया अमेरिका के हाथ, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है जो दीन से, खुदा से, रसूल से, आइम्मा से, अहले बैत से, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है। इसको हमने अपने नज़रों के सामने रखना है। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है जी वहाबियत तो चलती रहे, ये सारा कुछ चलता रहे, लेकिन वहाँ पे मज़ारात जो है उनके ऊपर जो है इमारतें बन जाएँ, रोज़ा बन जाए। हमारा मतलब और मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे रोज़े भी बने, लेकिन ये जो उनके मगरबी साम्राज्य के एजेंट हैं उनके एजेंट ही ख़त्म हो जाए, ताकि मुसलमान आज़ाद हो, ताकि इस्लाम आज़ाद हो, सिर्फ मज़ारात आज़ाद ना हो, दीन आज़ाद हो जाए, मुसलमान ये अमेरिकी तसल्लुत से आज़ाद हो जाएं। और जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये कोई दूर नहीं है, और आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो मुसलमानों के अंदर हम आसानी से देखते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वहाबियत को जो उसकी बुनियादी अकायद हैं उसको समझा जाए। ये इब्ने तैमिया उसका उसकी जो नफ्सियात है उसको समझा जाए, और जो हालात उसके इर्द गिर्द थे जिसने उसकी ये नफ्सियात बनाई उसको समझा जाए, ताकि इस नज़रिए को तोड़ दिया जाए। जब तक नज़रिया नहीं टूटता तब तक जो है वो निज़ाम एक जगह से ख़त्म होगा, दूसरी जगह पे आ जाएगा, दूसरी जगह से ख़त्म होगा, तीसरी जगह से आ जाएगा। सऊदी से ख़त्म हुआ तो दाइश आ गई, दाइश ख़त्म हुआ तो अब जो है कोई और तरीका जो है वो आ जाएगा, ये चलता रहेगा। इसलिए जिम्मेदारी हमारी ये है कि इल्मी तौर पर इस जो वहाबियत है उनके जो अकायद हैं जो बुनियाद है उनको खात्मा किया जाए। और इनमें भी सबसे अहम तरीन ये है कि अगर मुसलमान मिलके बादशाहत को गैर इस्लामी साबित कर देते हैं कि जी इस्लाम में अगर तो हुकूमत का निज़ाम है तो या तो नबूवत का निज़ाम है या फिर शिया जो है वो इमामत का निज़ाम करार देते हैं या अहले सुन्नत जो है वो खिलाफत का निज़ाम करार देते हैं। इन तीन के अलावा बाकी जितने बादशाहते हैं ये सारे गैर इस्लामी हैं। अगर हम ये साबित कर दें और इसको जो है वो बुनियाद बना लें तो बाकी सारी इमारत खुद ब खुद इनकी गिर जाएगी, इसलिए कि बुनियादी तौर पे इस वक्त ये खड़ी इसलिए है क्योंकि अरब बादशाहतों को इसने जवाज़ दिया हुआ है। अगर ये जवाज़ देना बंद हो जाए तो ये इमारत खुद ब खुद गिर जाएगी और हम देख रहे हैं कि ये गिर रही है, हमारे नज़रों के सामने है और हम देख रहे हैं कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेदार हो रहे हैं, हकायक से वाकिफ़ हो रहे हैं। सोशल मीडिया और दीगर ने जो एक इंफॉर्मेशन का सैलाब जो है वो लोगों के सामने जो है बहा दिया है तो लोग अब जो है समझने लगे हैं। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब मुसलमान आज़ाद होंगे इनसे और अमेरिकी साम्राज्य से और एक आज़ादाना मुसलमान कौम जो है वजूद में आ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फर्ज। माशाल्लाह किबला, काफ़ी हद तक व्यूअर्स के जो सवालात हमारे पास पहुँचे हैं वो वाज़ह हो चुके हैं। मुख्तसरन एक दो सवाल करेंगे क्योंकि वजाहत आपने काफ़ी सवालों की कर दी है जो व्यूअर्स के हम तक पहुँचे हैं। एक सवाल जो बहुत अहम है, सऊदी के जो वली है नायब है मोहम्मद बिन सलमान, उसने ये गलती तस्लीम कर ली कि वहाबियत हमने मगरब की इमा पर फैलाई थी पूरे मुस्लिम उम्मत में, तो क्या ये दूसरी गलती जो उन्होंने जन्नतुल बकी के मज़ारात को मुनद्दम किया है वो गलती क्या तस्लीम उन्होंने की है या खुलकर वाज़ह तौर पर
नहीं? कभी ये तस्लीम नहीं करेंगे। उसका सबब ये है कि वहाबियत का जो बुनियाद है वो मुसलमानों की दुश्मनी पे कायम है, ख़ास तौर पे फिर जो है शिया दुश्मनी पे कायम है। इसलिए जब तक ये मज़ारात तशय्यू की एक निशानी रहेंगे तब तक ये कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए कि ये इसलिए नहीं है, मिनाजु सुन्ना जो इब्ने तैमिया का है वो पढ़ के आप देख लें, वहाँ पे उन्होंने शिया को रद्द करने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है, फिर भी उसको जो है शेखुल इस्लाम कहा जाता है। कहते हैं जी फला फला किताबों में ये रवायत है ही नहीं जबकि वो मौजूद है वहाँ पर। कहते हैं कि जी ये जो मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला और वालिमन वाला हो आदमन आदा हो, ये जो वालिमन वाला हो आदमन आदा हो ये तो है ही नहीं, और पहला हिस्सा जो है वो भी ज़यीफ़ है जबकि सारे मुसलमानों ने उलमा ने ये कहा है कि जी मुतवातर हदीस है। जो मुतवातर हो उसको वो कहता है कि जी ये ज़यीफ़ है और जो सही हो उसको वो कहता है कि जी ये तो है ही नहीं, वजूद ही नहीं रखती। तो ये उनकी एक नफ्सियात है और ये एक मुनाजरे की नफ्सियात होती है, सामने वाले की हर चीज़ को रद्द करना है चाहे वो कितनी दुरुस्त क्यों ना हो क्योंकि मैंने नहीं मानना उसको। इसलिए चूँकि इस वक्त जो है मजहबियत और फ़िरक़ेवारियत जो है वो ग़ालिब है इस वहाबियत पे, वहाबियत दीन की नुमाइंदा नहीं है, ये एक फ़िरक़ेवारियत का जो है वो बीज है, इसलिए ये हमेशा मुसलमानों के मद्दे मुकाबल ही रहेगा तब जो है ये वजूद रहेगा। अगर वो तस्लीम करते हैं कि सुन्नी भी ठीक है शिया भी ठीक है तो उनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि जी ये रोज़े जो है उन्होंने जो गिराए हैं ये कोई उन्होंने बुरा काम किया है। ये अगर वो दिल में समझें भी तो कभी तस्लीम नहीं करेंगे।
जी अकबर, एक और अहम सवाल है तारीखी पस मंज़र के हवाले से। व्यूअर्स हमसे पूछना चाहते हैं कि जब ये मज़ारात मुनहतम की जा रही थी तो उस वक्त तशय्यु की कुछ कुव्वतें मौजूद होंगी यकीनन, उन्होंने क्या इस के बारे में कुछ मज़ाहमत की, कुछ रुकावट या कोई ऐसी तहरीक चलाई उस वक्त?
जी, जो उलमा थे उस वक्त, क्योंकि नजफ जो है वो इल्मी तौर पर मरकज़ था, बाकायदा जो है इसको इल्मी तहरीक भी उठाई इसके जो उन्होंने कहा कि जी ये जायज़ नहीं है और ये इस तरह से, और फिर जो है मुजाहरात भी एक हद तक जो है हुए। लेकिन चूँकि वो उस वक्त जो है वो उठ रहे थे और इसी नाम से वो आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उनको जो है वो कोई कुव्वत तशय्यो के पास नहीं थी जिसको जिसके ज़रिए से रोका जाए। और ईरान में जो बादशाहत थी, बादशाहत का भी तो कोई दीन नहीं होता, बादशाहत बादशाहत होती है चाहे किसी भी नाम से हो, शिया नाम से हो, सुन्नी नाम से हो, ईसाई नाम से हो, मुसलमान नाम से हो, गैर मुस्लिम नाम से हो, बेदीन नाम, बादशाहत बादशाहत होती है, उसको सिर्फ अपना जो है मुस्तकबिल नज़र आता है, वो कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए उस वक्त जो है कोई ज़्यादा मजबूत नहीं था। अहले सुन्नत जो है वो ताकतें काफ़ी मजबूत थी, इसलिए जब उन्होंने ये इरादा किया कि रसूल अकरम के रोज़े को भी रोज़ बिल्ला अगर किराया किया जाए, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ मुजाहरे हुए और रिएक्शन होना शुरू हुआ। और फिर उन्होंने देखा कि अगर ये हम काम करेंगे तो शायद हमारी तहरीक रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने जो है रसूल अकरम के रोज़े अक़दस को नहीं गिराया। वरना उनके नज़र में सबसे बड़ा जो उनकी जो ज़बानी है कि सबसे बड़ा बुत जो है वो ये रसूल अकरम का रोज़ा है नऊज़ुबिल्लाह। तो उस वक्त जो है सूरत हाल मुसलमानों की कमज़ोर थी और छोटी छोटी बादशाहतें कायम थी, उस्मानी खिलाफत जो है कमज़ोर हो चुकी थी, बरतानिया जो है और मगरबी साम्राज्य जो है वो सऊदी की पुश्त पे था, इस तहरीक की पुश्त पे था, क्योंकि उन्होंने जो है वो खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना था। तो उस वक्त जो है वो कोई कुव्वत जो है वो सामने नहीं आई इतनी कि जो उनको रोक सके।
जी हाँ, एक और सवाल व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत आ रहे हैं, काफ़ी हद तक आपने वजाहत भी कर दी है वहाबियत और सलफियत की। व्यूअर्स ने एक सवाल भेजा है कि वहाबियत सलफियत से अलग है या सलफियत वहाबियत की अगली मंजिल है?
जी, बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा, एक दफ़ा दोहराए देता हूँ कि सलफियत एक तहरीक थी, मजहब नहीं था। ये मजहब बनाया है इब्न तैमिया ने 7वीं सदी हिजरी जो है उसमें, वरना ये एक तहरीक थी। इसका उन्वान ये था कि हमने दीन में काफ़ी बिदअतें शामिल कर दी हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, तो वापस जाएं। और रसूल अकरम के दौर में और फिर सहाबा के दौर में और ताबईन और तबा ताबईन के दौर में जाकर देखें कि इस्लाम की क्या सूरत हाल थी, वही इस्लाम जो है वो हमारे लिए मिसाली इस्लाम है। तो ये एक तहरीक थी इस हवाले से। ये जब 7वीं सदी हिजरी में इब्न तैमिया आता है तो इसने इस तहरीक को एक मजहब बना दिया बाकायदा, इसके जो है उसूल व ज़वाबित जो है मुतय्यन करके, और फिर जो है वो ये इब्न तैमिया तो 7वीं सदी हिजरी का है और उसमें उसको ख़ुद जो है कोई ज़्यादा कामयाबी नसीब नहीं हुई, उस अपनी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। फिर 12वीं सदी हिजरी में ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब आता है और उसने देखा कि यहाँ पे सऊद ख़ानदान है, जो कि उस वक्त जो है वो एक डाकू ख़ानदान था, एक जिसको कहते हैं कि बहरहाल मरने मारने वाला ख़ानदान है, उसके साथ इत्तेहाद किया और मुसलमानों से लड़ने के लिए उनको एक ऐसा नज़रिया चाहिए था जो बाकी मुसलमानों को काफिर करार दे, मुशरिक करार दे, ताकि उसके खिलाफ लड़ना जो है वो आम लोगों को धोखा देना आसान हो जाए। तो उन्होंने फिर इब्न तैमिया के वो कवानीन लिए और उसको और ज़्यादा सख्त अंदाज में जो है वहाबियत ने पेश किया, वहाबी ماہیت بنیادی طور پہ محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک ہے اس کو کہا جاتا ہے. سلفیت ایک تحریک ہے لیکن اس کو مذہب بنا دیا پھر ابن تیمیہ. یہ صورت حال اس طرح سے.
آخری سوال ہے، کیا جیسے عراق میں مقام مقدسہ کی حفاظت، کیونکہ تاریخ میں یہ گزرا ہے کہ ان کے بھی روز دوسرے مقام مقدسہ شہید کیے گئے تھے، وہاں کی عوام نے کچھ ریئیکشن دکھایا، کیا سعودی میں ابھی تک عوام اس کے خلاف کوئی ریئیکشن کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے، یا وہاں پہ کچھ ایسا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟
آپ اگر سعودی تاریخ دیکھیں تو اب تو کھل کے جو ہے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ان کا ملک جو ہے وہ کتنا ظالمانہ اس کا معاشرہ ہوگا کہ جس ملک کا سفارت خانہ کسی اور ملک میں، جبکہ ملک بھی جو ہے وہ ترکی ہے، دوسرا ملک ہے، وہاں پہ اس کا سفارت خانہ ہے. سفارت خانے کا مطلب ہی سفارتی باتیں ہوتا ہے، لیکن اپنے مخالف کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور آج تک انہوں نے لاش نہیں دی. آج تک جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی لاش کہاں گئی، اور نہ یہ معلوم ہے کہ جی یہ حکم کس نے دیا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ان کی جو ہے وہ مخالفین کے ساتھ اپنے ملک سے باہر کا یہ ہے تو اندر کیا ہوگا؟ اندر جو بھی آواز اٹھاتا ہے حکم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں پڑتا کہاں ہے. اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ شیعہ اور سنی جو ہے افراد مسلسل گم ہوتے رہے ہیں، اور ان کا جو وجود ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا، کہاں قتل کیا گیا، کہاں دفن کیا گیا، کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے ایک ظالمانہ حکومت ہے جو کوئی جو ہے وہ اخلاقیات کو نہیں جانتی، کوئی جو ہے اس کے اندر نرمی نہیں ہے. وہی یزیدیت کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو آل رسول ہے ان کو قتل کرنے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ بھی اسی نفسیات کے مالک جو ہے وہ افراد ہیں. اس لیے کہ اسی کو جو ہے یہ فالو کرتے ہیں، بادشاہت معاویہ اور یزید کی فالو کرتے ہیں. اس لیے ان کے اندر میں ایک انسان کی عزت، آبرو، ان کا خون اور احساس اور ہمدردی اور رحم دلی، یہ ان کے اندر پائی نہیں جاتی. ان شاء اللہ. السلام علیکم.